समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं एक बार फिर लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। कार्यक्रम में होंगे अब तक के मुख्य समाचार, साथ ही चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय।
हेलो वैष्णवी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट वैष्णवी। एंड फॉर यू विद अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Uproar in both houses of parliament by opposition parties continues over various issues, adjourning the Rajya Sabha and the Lok Sabha for the day.
भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर लोकसभा और राज्यसभा ने स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says better roads will cut logistics costs to 9% by year end.
इजरायली कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जे के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रस्ताव को मंजूरी दी, युद्ध समाप्ति की 5 सूत्री योजना को अपनाया।
इन कैनेडियन ओपन टेनिस, 3-स्टार विक्टोरिया एम बोको अपसेट्स 4-टाइम चैंपियन नाओमी ओसाका इन द वुमेन सिंगल्स फाइनल टू क्लेम हर फर्स्ट WTA 1000 टाइटल। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about launch of Quit India Movement, Har Ghar Campaign and International Cat Day. Well, to start off with the first topic, that is the launch of the Quit India Movement. Well, on 8 August 1942, the Quit India Movement was launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi, demanding an end to British rule in India.
ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया।
Yes, in the draft proposed massive civil disobedience if the British did not accede to the demands. And on 8 August 1942, Mahatma Gandhi made a call to do or die in his Quit India speech delivered in Bombay at the Gowlia Tank Maidan.
तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी के आह्वान पर भारत से अंग्रेजों की व्यवस्थित वापसी की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। गांधी जी के भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया।
Despite the arrest of the top nationalist leadership, large protests and demonstrations were held all over the country. Workers remained absent and strikes were called. In Tamluk and Kontai subdivisions of Mednipur, the people were successful in establishing parallel governments, which continued to function until Gandhiji personally requested the leaders to disband in 1944.
उत्तर प्रदेश के बलिया में लोगों ने जिला प्रशासन को अस्वीकार कर दिया। लोगों ने गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा किया और अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। वहीं ग्रामीण बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन नए करों और जबरन चावल निर्यात के खिलाफ किसानों के आक्रोश से प्रेरित था।
The Quit India Movement saw widespread participation from various sections of Indian society. Among others, the following section of society participated in the movement. Workers, students and middle class radicals were involved in most parts of the country and the movement spread to the villages. Bihar and Eastern Uttar Pradesh witnessed the unprecedented participation of the students. Militant students of Patna and Banaras played a significant role in this movement.
किसान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सक्रिय थे, तो वहीं बंगाल और ओडिशा में आदिवासियों ने संघर्ष में हिस्सा लिया।
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम लोअर रैंक्स ऑफ द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टुक पार्ट व्हिच डिक्रीज पीपल्स डिवोशन टू द गवर्नमेंट। सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग पुलिस पास्ड ऑन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन टू द एक्टिविस्ट्स।
अब अगर हम महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही स्थानीय समुदायों को संगठित और लामबंद करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Yes, and the British government came down heavily upon the people. It arrested over 10,000 people. The movement was successful in making the British realize that India was ungovernable in the long run, and the question for the post-war era became how to exit gracefully and peacefully, leading to India's independence on 15th August 1947. Well, now moving on to a second topic in a Dateline section, that is the Har Ghar Tiranga campaign. And let's start with a famous quote by Henry Ward Beecher, who very famously said, "A thoughtful mind, when it sees a nation's flag, sees not the flag, but the nation itself."
झंडा भावनाओं का नहीं बल्कि इतिहास का प्रतीक है, ये कहा है वुड्रो विल्सन ने। हर घर तिरंगा अभियान हर भारतीयों को गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आमंत्रित करते हुए वापस आ गया है। आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत शुरू किया गया ये अभियान नागरिकों को अपने घरों, कार्यस्थलों या वाहनों पर तिरंगा फहराकर अपनी देशभक्ति व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
Yes, and this nationwide movement aims to deepen the connection of the people with the national flag and to collectively celebrate the Independence Day of India. The campaign also serves to remind every Indian of the sacrifices made by freedom fighters and the importance of national unity.
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, उपयोग, प्रदर्शन, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित होता है।
Yes, and let's also talk about the provisions of the Flag Code of India 2002. Firstly, whenever the national flag is displayed, it should occupy the position of honor and should be distinctly placed. A damaged or disheveled flag should not be displayed and shall be destroyed as a whole privately.
राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडों के साथ एक ही मोस्थल से नहीं फहराया जाना चाहिए, तो वहीं किसी अन्य ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा, ऊपर या उसके साथ साथ नहीं लगाया जाना चाहिए। कोई भी आम नागरिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर, चाहे वे औपचारिक हो या अन्य, राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं।
Yes, and let's also talk about the recent amendments. The Flag Code of India 2002 was amended in 2021, allowing polyester or machine-made flag, and again in 2022, allowing flag to be flown day and night. And the national flag shall be rectangular in shape. The flag can be of any size, but the ratio of the length to the height, width of the flag shall be 3:2. And now on to our last topic in our Dateline section, that is the International Cat Day. And Vaishnavi, cats make life a little more perfect.
Absolutely. जैसे कि लियोनार्डो द विंची ने कहा है, सबसे छोटी बिल्ली भी एक उत्कृष्ट कृति है। आज अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस है। मनपसंद पालतू जानवरों में बिल्ली का जिक्र भी खूब सुनने को मिलता है। हर साल 8 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि बिल्लियों की सुरक्षा और देखभाल को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग को जागरूक किया जा सके। साल 2002 में इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर ने बिल्लियों की दुर्दशा को रोकने और उनकी हालत सुधारने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाने की शुरुआत की थी।
Yes, and the International Fund for Animal Welfare launched it in 2002 in order to increase awareness of cats and their needs as well as to advocate their welfare. And the day honors the company and happiness that cats bring into people's life, as well as reminds us of the need of conscientious cat ownership, including spaying, neutering, and shelter adoption.
और और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
द थर्ड डे ऑफ द ऑनगोइंग बुक फेयर न्यू दिल्ली व्हिच वाज इनॉग्रेटेड ऑन 6th अगस्त एट भारत मंडपम इज विटनेसिंग एन एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। द फेयर फीचर्स अ वाइड रेंज ऑफ बुक्स अक्रॉस जॉनर्स सच एज फिलोसफी, बायोग्राफीज, कॉमिक्स, स्पिरिचुअल टेक्स्ट एंड पोएट्री। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
Delhi Book Fair is providing a platform for local and book agencies to showcase their work, highlighting linguistic diversity and promoting a multilingual India through the medium of books and publishing. A large number of visitors, including students, young readers and senior citizens, have been attending the fair. Talking to the Akashvani News, a visitor named Anusha shared her experience about the book fair, saying that she bought fictional novels.
I have been coming to book fair since I was like a little child. Every year with my parents, we used to see it in the newspaper and everything. So I've got a ton of books. There's this one called Fractured. It's upon the thing like post-pandemic manifesto, basically what happens. And there's Designing Your Work Life by Bill Burnett and Dave Evans. These are very specific to the people that I need to give them to. And there's this one more thing called The Power of Not Thinking for some very sweet friends who think a lot, way too much, yes. So yeah, it has been really fun.
The book fair aims to foster a deep cultural connection through the joy of reading and discovering rare book collection. The book fair will continue till 10th of August with Ishani Shivang for Parikrama.
Yes, and inculcating the habit of reading amongst children, the Publication Division of Ministry of Information and Broadcasting today launched a new comic book based on popular children's animation series, Chota Bhim, launched at the 29th Delhi Book Fair, New Delhi. The comic book aims to promote reading habits among the youth by offering them a familiar character in a new format. At a time when digital content dominates children's entertainment, the ministry's novel initiative seeks to reintroduce young readers to the joy of printed books. Stories like these combine imagination with engaging values. And talking to Akashvani News, creator of Chota Bhim, Rajiv Chilaka, said that the comic book focuses on the evolution of the beloved character and the importance.
In today's world, या कोई भी जमाने में बच्चे तो बच्चे ही हैं, and kids will be kids and they love to play, they love to jump around, they will be naughty, some of them will be serious, they have mood swings and everything. But Bhim as a character is majorly meant for entertainment. Also, when we created Bhim, we want Bhim to be a friend with the kid, you know, guide them through different various things they will face. So in through the series, through the books, through the Chota Bhim series, we teach kids certain values.
In a time when screens dominate the world, the storytelling art of comic books has found a new life, offering imagination, values and joy between the pages.
हिमाचल प्रदेश में हरित आवरण में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में जन सहभागिता सुनिश्चित करने ते हुए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ की है। राज्य में पारंपरिक पौधरोपण मॉडल के स्थान पर इस योजना के तहत महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत समुदाय आधारित संगठनों को शामिल कर जन सहभागिता से पौधरोपण सुनिश्चित किया जा रहा है। ये समूह बंजर वन भूमि क्षेत्रों में पौधरोपण और रखरखाव जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वन क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ इस योजना से राज्य भर के हजारों ग्रामीणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक तंत्र और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगी। योजना के तहत पारिस्थितिकीय आवश्यकता व पहुँच के आधार पर प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को 5 हेक्टेयर तक खाली या बंजर वन भूमि आवंटित की जाएगी। वन विभाग अपनी नर्सरियों से गुणवत्ता युक्त पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और सफल पौधरोपण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। इस योजना की सफलता के लिए प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए या भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाएगी। 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों के लिए धनराशि अनुपातिक आधार पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त रोपे गए पौधों की सत्यापित जीवित प्रतिशतता दर के आधार पर 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पौधों की जियोटैगिंग मॉनिटरिंग और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा और सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से समुदाय आधारित संगठनों के बैंक खातों में किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल कार्बन पृथक्करण, जल संरक्षण और मृदा स्थिरीकरण में सुधार के माध्यम से पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करना है, बल्कि आजीविका के अवसर पैदा कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इससे वन बहाली के सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्थानीय समुदाय सशक्त होंगे, स्थानीय प्रजातियों और पौधरोपण से जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। परिक्रमा के लिए शिमला से मैं रितेश कपूर।
The second edition of the International Film Festival begins in Puducherry today. The three-day cinematic celebration will showcase a diverse lineup of films from several countries. National award-winning film editor Srikar Prasad will inaugurate the festival this evening at the Orleans Francais Auditorium. We have more from a correspondent.
The festival opens with the screening of the French film Tori and Lokita tonight, organized jointly by the Puducherry Film Forum, Alliance Francaise Puducherry, and the Tamil Nadu Progressive Writers and Artists Association. The event will feature screenings, discussions, and interactive sessions. Tomorrow's lineup includes Spanish film Afternoons of Solitude, UK film Living, Iranian film My Favorite Cake, and Tamil film Manidargal. A panel discussion on the future of cinema with editor Srikar Prasad and director Shiva Kumar, along with a post-screening interaction with the makers of Manidargal, is also scheduled. On the final day, Argentinian film The Delinquents and American film A Complete Unknown will be screened. The festival will conclude with the Hindi film Sister Midnight, directed by Karan Kanthari. Entry to all screenings and sessions is free and open to the public. For Parikrama, this is Bibina Siddharth, Akashwani News, Puducherry.
The Indian Institute of Management, IIM Jammu, under the visionary leadership of Professor B.S. Sahai, Director, IIM Jammu, has recently launched a transformative cultural initiative titled Bandhan, a cultural immersion initiative in India, celebrating the spirit of Jammu region and Dogri heritage with the local families of Jammu. We have more from a correspondent.
This unique program offers students a transformative and experiential learning experience opportunity that bridges the gap between academic rigor and grassroots realities. Through this program, students of IIM Jammu step beyond the confines of the classroom and into the welcoming embrace of the local Dogra families, discovering the beauty of tradition, empathy and belongings. To begin with, 412 first-year MBA students grouped in 4 to 5 will participate and will be hosted by the local Dogra families. More than 100 local Dogra families have already shown interest and joined the institute for the formal launch of the Bandhan program, showcasing overwhelming community support for this powerful cultural movement. These local families will be welcoming the students of the incoming batches of IIM Jammu into their homes, symbolically adopting them and offering them a home away from home. As part of Bandhan, students of IIM Jammu engage in a thoughtfully curated series of experiential activities that immerse them in the cultural and social fabric of the region. The initiative begins with home visits where students are warmly welcomed into local households, sharing authentic home-cooked meals and engaging them in heartfelt conversations that reflect the warmth and hospitality of Dogra cultures. Bandhan also strengthens the connection between IIM Jammu and the local community, reinforcing mutual goodwill and cooperation. Most importantly, it contributes to the personal growth of students, nurturing humility, gratitude and a broadened worldview, hallmarks of socially responsible and culturally grounded leadership. And Gulshan Rana for Parikrama from Jammu.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। टेनिस में कनाडा की 18 वर्षीय वाइल्ड कार्ड विजेता विक्टोरिया मबोको ने चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को 2-6, 6-4, 6-1 से हराकर कनाडा ओपन में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता।
Yes, and on to some business news. Domestic benchmark indices closed almost 1% down today as investor sentiment took a hit after US President Trump announced doubling tariffs to 50% on Indian imports. Continued foreign fund outflows also added to market lows. The Sensex slipped 765 points to settle at 79,857.79, while the NSE ended the day at 24,363, down 233 points. Broader markets suffered bigger losses. The mid-cap index closed 1.56% down, and the small-cap index shed 1.03%.
अब वक्त है करीब से देखने का उन खास लोगों को जिन्होंने आज जन्म लिया या दुनिया से विदा हुए। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
We remember Gandhian freedom fighter Titus Thevarathundail, who died on the 8th of August 1980. A trusted friend of Gandhiji, he was one of the 78 marchers selected by Mahatma Gandhi to take part in the 1930 Dandi March.
Titus was born on the 18th of February 1905 in Maraman, Kerala, to Marthoma Syrian Christian family. He served as the governing secretary for Gandhiji's Sabarmati Ashram Milk Project near Ahmedabad. Gandhiji gave him the honorific of Titusji. On the 15th of March 1925, Mahatma Gandhi visited Titusji's house in Maraman on his way to Aranamuya. This was considered one of the greatest events in central Travancore. In and around Maraman, thousands witnessed his visit.
After independence, Titus settled in Bhopal. In 1970, he published the book, The Bharat of My Dreams. He was also represented in the early designs of the 500 rupee note. Titus Thevarathundail died on the 8th of August 1980 at the Kasturba Hospital in Bhopal.
Yes, and we are also remembering Glenn Campbell, who passed away on this day in 2017. He was an American country musician and actor. He was best known for a series of hit songs in the 1960s and 1970s. And a revered session guitarist before breaking through as a solo performer, Campbell released 64 albums in a career that spanned five decades. Let's listen into his hit track, Rhinestone Cowboy.
I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me like a rhinestone.
Yes, and also Shawn Mendes was born on this day in 1998. He's a Canadian singer. He gained a following in 2013 when he posted song covers on the video sharing platform Vine. His debut studio album, Handwritten, was released in 2015. Handwritten debuted atop the US Billboard 200, making Mendes one of the five artists ever to debut at number one before the age of 18. And the single Stitches reached number one in the UK and the top 10 in the US and Canada. Let's listen to it.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me beat it till I can't breathe.
Yes, and Debashree Roy was born on this day in 1962, also known as Debashree Roy. She's an Indian actress, dancer, choreographer, politician, and animal rights activist.
आज जन्मदिन है सिद्धेश्वरी देवी का, जिनको ठुमरे की रानी कहा जाता था, जिन्होंने अपनी गायकी से बनारस घराने को अमर किया. उनकी आवाज में भावनाओं का एक ऐसा जादू था कि ख्याल दादरा और कजरी सुनने वालों के दिल को छू लेती थी. उनकी हर रागनी प्रेम और भक्ति की कहानी कहती थी. वर्ष 1977 में सिद्धेश्वरी ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी ताने आज भी गूंजती हैं. आइए उनकी ठुमरी रस के भरे तोरे नैन में उनकी गायकी को महसूस करें.
रस के भरे तोरे नैन में, रस के भरे
Saint David Howell Evans was born on this day in 1961. Better known as The Edge or simply Edge, he's an Irish and British musician, singer and songwriter. He's best known as the lead guitarist, keyboardist and backing vocalist of the rock band U2. Let's listen in to the band's hit track With or Without You, and it's from the album Joshua Tree.
See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you.
आज जन्मदिन है प्रसिद्ध भारतीय लेखक भीष्म साहनी का। उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई गहराई दी। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने इंसानियत की बातें कही। उनके उपन्यास तमस ने 1947 के विभाजन से गुजरे लोगों की कहानियों को उकेरा, और झरोके और बसंती ने आम लोगों के दुख सुख को जीवंत किया। उनकी हर कहानी दिल को छू लेती थी। साहनी ने नाटकों और सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। कबीरा खड़ा बाजार में जैसे उनके अनेक नाटकों ने सामाजिक सवाल उठाए, और मोहन जोशी हाजिर हो में उनके अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के साथ उनके काम ने साहित्य और समाज को जोड़ा। आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म तपस का ये डायलॉग।
कोई भी साधु घर में आ जाए तो उससे सवाल पूछते हैं, आध्यात्मिक सवाल पूछ, अपनी जिज्ञासा पूरी करते हैं। ये जिज्ञासा का जो पहलू है, ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और बहुत खूबसूरत अंग मैं समझता हूँ। दूसरे, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे उनकी परिकल्पना करने वाला विराट के दर्शन कर रहा है, समूचे ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने है, और कहीं उसमें तंग नजरी नहीं है, पक्षपात भी नहीं है, मानव कल्याण की भावना से ओत प्रोत है। वो किसी जाति विशेष के बारे में, देश विशेष के बारे में नहीं सोचते, वो समूची मानव जाति के बारे में सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिना, उसमें ये नहीं कहा कि मेरी जाति के लोग सुखी हों।
स्कॉट स्टेपर बॉर्न एंथनी स्कॉट फ्लिपन वॉज बॉर्न ऑन दिस डे In 1973, he is an American singer and lead vocalist and lyricist of the rock band Creed. And Step and Creed bandmate Mark Tremonti won a Grammy Award for Best Rock Song in 2001 as the writers of the Creed song With Arms Wide Open. Let's listen to it.
Well, I just heard the news today. Seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. With arms wide open, under the sunlight, welcome to this place, I'll show you everything. With arms wide open.
Yes, and Roger Federer was born on this day in 1981. He is a Swiss former professional tennis player. He was ranked as a world number one in men's singles by the Association of Tennis Professionals for 310 weeks, including a record 237 consecutive weeks, and finished as a year-end number one 5 times. Federer won 103 singles titles on the ATP Tour, the second most since the start of the Open era in 1968, including 20 major men's singles titles, among them which are record 8 men's singles women titles, and an Open era joint record 5 men's singles US Open titles, and 6-year-end championships. And I also think, Vaishnavi, that you have... It's time to wind up our program.
Yes. श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का।
नमस्कार।